डायरेक्शन कुरान और सुन्नत की जब हो डायरेक्शन जन्नत के बागात हो डेस्टिनेशन डायरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये प्रोग्राम स्पेशली जामतुल मदीना के तलबा किराम के लिए है, और बिलुमूम जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे होंगे इंशाअल्लाह उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि उन मौजूआत का इंतखाब किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मुफीद साबित हों, और ख़ास तौर पर जो दीनी मदारिस के तलबा हैं, जो दीनी इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से आए, उन्होंने सफ़र इख्तियार किया। इनमें कई ऐसे हैं जो दूर दराज का सफ़र इख्तियार करके इल्म दीन हासिल करने के लिए जामतुल मदीना में एडमिशन लेते हैं, कुछ रोज़ाना आते जाते हैं, उनकी रिहाइश मदारिस के करीब हुआ करती है। करीब वाले हों, दूर वाले हों, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, सबसे पहले तो ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने दीन का इल्म हासिल करने का मौका अता फरमाया। यानी यूँ कहिए कि तबके के अंदर बहुत सारे अफराद सोसाइटी के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने दीन का इल्म हासिल करने के लिए मुंतखब फरमाया, वो बड़े ही खुशकिस्मत हैं। इल्म दीन के क्या फ़ज़ाइल हैं, जो तालिब इल्म दीन होता है उसकी क्या बरकतें और क्या फजीलतें हैं, दुनिया में उसे क्या मिलता है, आखिरत में उसे क्या मिलेगा, ये तमाम चीज़ें पढ़नी भी चाहिए और इसको बार बार अपने जहन में नक्श रखना चाहिए, ताकि हम अपने मकसद के जो राह है उस पर गामजन रह सकें। आज का जो मेरा मौजू है वो गोल सेटिंग है। किसी भी अचीवमेंट के लिए आपके हदफ़ का, आपके टारगेट का, आपके गोल का क्लियर होना, वाज़े होना, अचीवेबल होना, ये नहायत ही ज़रूरी होता है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जब हम माशरे पे नज़र करते हैं, ख़ा वो दीनी तलबा किराम हों या दुनियावी स्टूडेंट्स हों, बहुत मरतबा ऐसा देखा गया है कि तालिब इल्म दीन जब कोई स्टूडेंट होता है तो वो अपने हदफ के मामले में कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता, और इसका नुकसान ये होता है कि जो करना है वो उतनी क्लैरिटी से और उतने बेहतर अंदाज पर फोकस होकर नहीं कर पाते। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि एक नहर है जिसके दोनों किनारे सीमेंटेड हैं, उसको पक्का किया हुआ है, और उसके अंदर एक क्लैरिटी है और वो पानी के बहाव को एक सही डायरेक्शन पर रखे हुए है, तो यूं समझिए कि पानी अपने वक्त पर ज़ाय हुए बगैर सही जगह पर पहुंचेगा। और अगर किनारे ही कमज़ोर हों, उसकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, किनारे टूटे हुए हैं, कुछ पानी दाएं जा रहा है, कुछ बाएं जा रहा है, तो जिस जगह पर पानी को पहुंचना है वहाँ पहुँचने में ताखीर भी होगी और रास्ते में बहुत सारा पानी ज़ाय भी होगा। तो जब आप किसी काम को करने की इब्तिदा करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या करने जा रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है, मेरा हदफ क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं। जामतुल मदीना में पढ़ने वाले तलबा किराम जाहिर है कि वो इस नीयत से आते हैं कि मुझे आलिम दीन बनना है, अपने अमल के साथ साथ दूसरों की रहनुमाई करने के भी काबिल हो सको। तो कहीं पर भी हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे इसके अलावा कुछ और भी करना है। आपका जो मेन मकसद है, आपकी जो मेन डायरेक्शन है, वो बिल्कुल सादा और वाज़े होनी चाहिए। चूँकि हमने भी ये वक्त गुजारा है तो कई तलबा किराम को ये देखा गया कि इब्तिदा तो कर दी लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बेचारे ख़ुद कन्फ्यूज़ नज़र आए कि मैंने क्या करना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आगे चल के मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह के जो तलबा किराम होते हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। याद रखिए कि जब तक कोई भी इंसान, ख़ा वो तालिब इल्म दीन हो या दुनियावी उलूम हासिल करने वाला हो या किसी भी बिज़नेस को करने वाला हो या कोई भी ज़िंदगी का काम करने वाला है, सबसे बुनियादी चीज़, जब तक आपका हदफ, आपका टारगेट आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तो यूं समझिए कि आप अपना वक्त भी ज़ाय करेंगे, आप अपना सरमाया भी ज़ाय करेंगे, आप अपनी एनर्जी भी लूज़ करेंगे। तो जब आप दरस निज़ामी के लिए आ गए और आलिम दीन बनने के लिए आ गए तो दैट टारगेट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अब मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई टारगेट बनाते हैं, कोई हदफ बनाते हैं, तो जब तक वो अचीवेबल ना हो, यानी कि वो ऐसा ना हो कि जिसका हुसूल मुमकिन हो, तब तक आप अपने टारगेट को मुकम्मल नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा टारगेट बना लिया है, कोई ऐसा हदफ बना लिया है कि जो आपके इख्तियार में ही नहीं है, आप उसे कर ही नहीं सकते। अब ऐसे टारगेट को अगर आप बनाते हैं तो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात बाज़ स्टूडेंट्स मुताले के एतबार से, स्टडी के हवाले से एक इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि भाई ये 8 साल के अंदर इसको पाना मुमकिन भी है या नहीं, तो उनके पास खुद जवाब नहीं होता। तो अगर आपका कोई भी टारगेट है वो अचीवेबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, तो फिर आपने उसे अपना हदफ ही क्यों बनाया। तो एक तालिबे इल्म के लिए ये निहायत ज़रूरी और अहम होता है कि आप एक साल का टारगेट बनाएं, 2 साल का बनाएं, 10 साल का बनाएं, आप ज़िंदगी का बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आप कम अज़ कम उसको इस एक नज़र से देख लें कि ये क्या अचीवेबल भी है या नहीं। अब मिसाल के तौर पर ऐसा आपने टारगेट बनाया कि जिसके लिए रोज़ाना आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो क्या रोज़ाना 15 घंटे पढ़ना आपके लिए मुमकिन है? क्योंकि 4-5 घंटे तो आपके क्लास के अंदर गुजरेंगे, उसके बाद आपने नमाज़ें भी पढ़नी हैं, उसके बाद एक सेहतमंद शख्स के लिए 6 से 8 घंटे की नींद का लेना ज़रूरी है, उसके बाद आपने खाना पीना भी है, उसके अलावा भी आपने कुछ ना कुछ आराम करना है। अब आप कोई ऐसा टारगेट बना लें कि जिसमें 24 में से 15 से 18 घंटे चाहिए, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये अचीवेबल नहीं है। ऐसा टारगेट कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता। और आपको मैं ये अर्ज़ करूं, मेरे सामने जो इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप में एक तादाद होगी ऐसे तलबा किराम की कि जिन्होंने बहुत सारे काम शुरू किए होंगे लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हुए होंगे, और बीच में ही कहीं नामुकम्मल छोड़कर आप अपना दिल छोटा करके परेशान घूम रहे होंगे। और अगर आप गौर करेंगे तो उसकी शायद एक वजह ये होगी कि आपने जो हदफ बनाया वो अचीवेबल ही नहीं था। आपके पास जितना वक्त है, जितने वसाइल हैं, जितनी सहूलियात हैं, उसके अंदर रहते हुए उसका हुसूल मुमकिन ही नहीं था। जब किसी चीज़ का हुसूल मुमकिन ही नहीं, तो फिर वो आप अपना टारगेट क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे टारगेट बनाना शुरू कर दें, छोटे छोटे अहदाफ क्रिएट करना शुरू कर दें। नहीं, हदफ हमेशा बड़ा होना चाहिए, टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए, सोच हमारी वसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन बड़े टारगेट का होना, बड़े हदफ का होना, बड़ा आदमी बनना, बड़ा आलिम बनना, ज़्यादा इल्म दीन हासिल करना, ज़्यादा नेकी की दावत देना, ज़्यादा मुताला कर लेना, ज़्यादा किताबों का पढ़ लेना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप कोई ऐसा टारगेट बना लें कि जो आपके लिए मुमकिन ही ना हो। तो होता क्या है, जज्बात के अंदर जब हम कोई ऐसा टारगेट बना लेते हैं जो अचीवेबल ही ना हो, तो फिर जज्बात तो आर्जी होते हैं। जब आप हकीकत की दुनिया में जाएंगे, تو وہ کام مکمل نہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ ڈیمورالائز بھی ہوں گے اور بہت سارے آپ کے مسائل ہوں گے. تو جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے دیٹ شوڈ بی کلیئر، آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہونا چاہیے کہ واٹ آئی وانٹ ٹو بی، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں. اور دوسرا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں وہ اچیویبل ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی ہدف بنایا ہے، خواہ وہ کتاب پڑھنا ہے، کتاب لکھنا ہے، نصاب کو پورا کرنا ہے، یا اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو پڑھانا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکیں، اور اسے تقسیم ضرور کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام کافی طویل ہو، کافی بڑا ہو، مثال ہے جو درس نظامی کرنے آتے ہیں تو 8 سال تو ان کا ذہن ہوتا ہے کہ مجھے 8 سال پڑھنا ہے. اب 8 سال میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے، ظاہر ہے کہ درجنوں کتابیں آپ کے نصاب میں ہوں گی، اور ایکسٹرا کریکولم اسٹڈیز کی ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں نصاب کے علاوہ جو آپ نے پڑھنا ہے، ان کو ملائیں تو ٹوٹل 8 سال میں سینکڑوں کتابیں ہو جائیں گی. اب اگر سینکڑوں کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اور آپ اسے کسی بھی ٹائم کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے تو اس کا سمجھنا اور اس کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر انہیں آپ تقسیم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو آپ کا سلیبس ہے وہ تو آلریڈی تقسیم شدہ ہوتا ہے کہ پہلے سال میں اتنی کتابیں پڑھنی ہیں اور ان کتابوں میں سے مکمل کون سی پڑھنی ہے اور آدھی کون سی پڑھنی ہے، مخصوص ابواب کس کے پڑھنے، یہ سب آپ کے ٹیچرز اور آپ کے ناظمین آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے جیسے آپ کا سال شروع ہوتا ہے کہ اس سال کے پہلے ششماہی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، اگلی ششماہی میں کیا، یہ ساری چیزیں تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو آپ دیکھیے کتنا آپ کنفیوز رہیں گے کہ پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے جو سیلف اسٹڈیز کرنی ہیں، آپ کے جو اس کے ساتھ پرسنل گولز ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ہم نے کئی طلبہ کو دیکھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اور آپ پڑھتے تھے باقاعدہ طور پہ، تو کئی تو طلبہ کرام تھے کہ بے ہنگم وہ پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بس پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کتابیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور آپ نے کتنا پڑھنا ہے، تو کچھ پتہ ہی نہیں. اب ایسے طلبہ، میں نہیں کہتا کہ اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، ظاہر ہے آپ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ طلبہ جو کلیئرٹی کے ساتھ اور اپنے ٹارگیٹ کو تقسیم کر کے کہ بھائی مثال کے طور پر میں مشکاۃ شریف پڑھ رہا ہوں اور مشکاۃ شریف کے ساتھ جو نصاب ہے وہ تو ہے، وہ تو پڑھنا ہے، وہ تو لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے شرح کے اندر یہ 2 شروحات پڑھنی ہیں، اور ان 2 شروحات میں سے بھی اتنا اتنا حصہ میں نے روزانہ پڑھنا ہے، ہفتے کا اتنا ہو جائے گا، مہینے کا اتنا ہو جائے گا، اور میری جو ششماہی ہے اس کے اندر میں اتنا پڑھ لوں گا. اب یقین کرے، میں آپ کو آج مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنے جو بھی سلیبس ہے اور اس کے ساتھ مزید آپ کے جو بھی پرسنل اسٹڈیز کے اہداف ہیں، آپ نے حواشی پڑھنے ہیں، آپ نے شروحات پڑھنی ہیں، یا اس ٹاپک سے متعلق کچھ بھی پڑھنا ہے، اس کو آپ تقسیم کر کے پڑھیں اور آپ پھر دیکھیں کہ آپ کتنا زبردست اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا کوئی بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، بڑا کوئی ہدف ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے جذبات وقت کے ساتھ ساتھ ایک جیسے نہیں رہتے. بعض اوقات شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا جو نفع ہے وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو جذبات بعض اوقات ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں یار چھوڑو، کوئی اور کام کر لیتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک سینس آف اچیومنٹ آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہوگی، اس وقت تک آگے بڑھنا آپ کے لیے دشوار ہوگا. یہ سینس آف اچیومنٹ کیا ہوتی ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا ہے और आपको ये लगे कि हाँ मैं इसको हासिल करता चला जा रहा हूँ, तो उसके नतीजे के हासिल होने की जो सेंस और जो एक खुशी आपके दिलो दिमाग के अंदर पैदा होगी, ये आपको मोटिवेट करेगी मजीद काम करने में। और अगर एक लंबा काम आप करते चले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि यार मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, कोई नतीजा निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा, मैं अपने टारगेट को हासिल करने में कामयाब हो भी रहा हूँ या नहीं हो रहा, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो आपके अंदर है ही नहीं, तो बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि इसी वजह से आप अपने हदफ से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप किसी टारगेट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में, टाइम जोन्स के अंदर तकसीम कर लेते हैं, तो फिर आपको ये पता लगता है कि हाँ मैंने 1000 मीटर चलना था, अब मैं 100 मीटर चल चुका। जब 100 मीटर मैं चल चुका, ये सेंस आपके अंदर आएगी, तो आपको ये खुशी होगी कि मैं इसका इतना हिस्सा कर चुका, अब मुझे सिर्फ 900 मीटर बाकी चलना है। और अगर आपको पता ही ना हो कि मैं कितना चल चुका और कितना बाकी है, तो आपके दिमाग पर एक बोझ रहेगा कि यार पता नहीं कितना मैं चल चुका, कितना टारगेट मेरा बाकी है। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको अपने मुताले पर, अपनी स्टडीज पर, अपने दीगर अहदाफ पर, आप वज़न कम करना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, आप उसमें अगर इसको गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो योर टारगेट शुड बी अचीवेबल, क्लियर, और वो तकसीम होना चाहिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर। ज़िंदगी में हमने भी देखा, आपका भी हो सकता है तजर्बा हो, ऐसे बड़े लोग देखे कि जो 30 साल गुजार चुके, 40 साल गुजार चुके, और जब उनसे ये सवाल किया जाए कि ये बताइए कि आपने अपने 20, 30, 40 साल के अंदर क्या हासिल किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बस जिंदगी के 20-30 साल गुजर गए, हासिल क्या किया कुछ भी पता नहीं। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है, उनमें से एक ये होता है कि उनकी ज़िंदगी की टाइम मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होती। टाइम का मैनेज करके चलना ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है और वो कैसे हो सकती है, एक स्टूडेंट को अपने वक्त का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर इंशाल्लाह पूरा एक टॉपिक होगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो टारगेट के हम सब टाइटल्स को देख रहे हैं, उसमें एक ये है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके टारगेट के हुसूल में टाइम मैनेजमेंट का होना निहायत ज़रूरी है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ये है कि जब भी एक वक्त में एक टारगेट आपका चल रहा हो, तो खामखा मल्टीटास्किंग की तरफ ना जाएं। ये एक बहस है, बाज लोग ये कहते हैं कि भाई मल्टीटास्किंग एक अच्छी चीज़ है, और बाज लोग ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छी चीज़ नहीं। अब जुज़वी तौर पर इसके अंदर कहीं ना कहीं इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन याद रखें ज़्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो एक वक्त में एक काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई टारगेट बनाया कि मुझे इस साल के दौरान ये किताब मुकम्मल करनी है, तो उस दौरान फिर आप उसी किताब को मुकम्मल करें। अगर आप उसको आधा पढ़ने के बाद किसी और किताब को शुरू कर दें, अभी वो मुकम्मल हुई नहीं तो किसी और तरफ चले जाएं। आपने टास्क बनाया था कि मुझे इस साल के दौरान इतनी किताबें पढ़नी हैं, ये एक टास्क बनाया, ये करते करते आपने उसी दौरान कोई और काम शुरू कर दिया कि यार ये तो कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ मैं ये भी शुरू कर देता हूं। तो जब आप यूं करेंगे तो फिर आपका ना पहला काम मुकम्मल होगा ना दूसरा काम मुकम्मल होगा। मल्टीटास्किंग अगर क्लैरिटी के साथ हो और उन दोनों के अंदर कोई इख्तिलाफ ना आए, दोनों के तमाम तकाजे पूरे हों, फिर तो किसी हद तक उसको सराहा जा सकता है या किया जा सकता है। लेकिन चूंकि तालिबे इल्म जो है वो सब मैच्योर नहीं होते, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप अपने अहदाफ की एक लिस्ट बनाएं, तो उसमें कितने ऐसे हैं कि जो आपने शुरू किए और नामुकम्मल रह गए हैं? नामुकम्मल आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो अहदाफ हैं वो कितने हैं ज़रा लिखिए। कई तलबा हैं, बड़ा शुरू में उनको शौक़ होता है, अभी नूरुल ईदा पढ़ रहे हैं तो उसका हाशिया लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी चार अबवाब ही मुकम्मल हुए तो उसको छोड़कर हिदायत-उन-नहव का हाशिया लिखना शुरू कर दिया। अच्छा अब नहव के अंदर जो है वो हर एक को दिलचस्पी हो वैसी हो ज़रूरी नहीं, अभी उसको लिख रहे हैं तो यार इसके साथ साथ जो है ना मैं थोड़ा बाहर शरीयत के मसाइल को ना इस नज़र से लिखना और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब एक ही वक्त में आपने नूरुलदा का हाशिया शुरू कर दिया, हिदायत-उन-नहव पे आपने काम शुरू कर दिया और बाहर शरीयत को एक नए जाविये से लिखना और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दिए। तो अगर तो आपने इसको हर एक को एज अ प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर अलग अलग डिवाइड करके किया है फिर तो हो सकता है आप कुछ हासिल करने में कामयाब हो सके, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मल्टीटास्किंग आपकी क्लियर नहीं है तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, बॉसों को ये जवाब मिलेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ, हमने एक काम शुरू किया अभी वो पूरा हुआ ही नहीं था तो दूसरे काम की तरफ चल पड़े, अभी वो पूरा ही नहीं हुआ था तो तीसरे की तरफ चल पड़े, अब राबिया खामिसा सादिसा में पहुँच गए और पीछे मुड़ के देखते हैं तो मेरा कोई भी काम मुकम्मल नहीं है, मैंने जो भी काम शुरू किया था वो अधूरा रखा हुआ है। तो याद रखिए कि अधूरे काम अधूरी ज़िंदगी को जन्म देते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है, आप किसी भी बामकसद चीज़ को हासिल करने में कामयाब नहीं होते। तो अहदाफ की तागीन में आपकी डायरेक्शन बड़ी वाज़े होनी चाहिए। अगर आपने कुदूरी शरीफ का हाशिया या उसकी ट्रांसलेशन या कुछ भी उस पर काम करना है तो आप उसको तहरीर कीजिए, उसका वक्त देखिए, उसका टारगेट बनाइए, उसकी टाइम मैनेजमेंट कीजिए। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि मुझे कुदूरी शरीफ पर यह काम करना है और फिर उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके आप देखते रहिए कि आप इसमें से कितना काम आपने करना था और आप कितना कर चुके। जब एक काम आपका मुकम्मल हो गया फिर आप किसी और काम की तरफ जाइए, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आप चूँकि अभी तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका सबसे जो बुनियादी फोकस है वो आपके निसाब की तरफ होता है, और यही होना चाहिए कि आपने 7-8 साल जो पढ़ना है तो आपका जो सबसे बुनियादी टारगेट और हदफ है वो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली जो किताबें हैं उनका मुकम्मल होना है। वो आप बेहतर से बेहतरीन पढ़िए, फिर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी और मौका मिला तो आप और बहुत सारे काम करेंगे, ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन जो एक बुनियादी आपका टारगेट है, बुनियादी जो हदफ है, उसकी डायरेक्शन आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आपके जो अपने निसाब के अहदाफ हैं उन्हें अच्छे अंदाज पर मुकम्मल कीजिए, उसके बाद बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, फिर आप किसी भी फील्ड में जाएँ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़माने तालिबे इल्मी में आपका जो जाविया नज़र है वो फोकस होना चाहिए आपके अपने निसाब पर। तो अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ों को देखेंगे, मैंने एक जनरल गुफ्तगू की है टारगेट और हदफ के हुसूल के एतबार से, अब वो आपका निसाब भी हो सकता है, वो आपकी तहरीर भी हो सकती है, वो आपका बयान करना हो सकता है, वो आपका कोई और तंजीमी हदफ है आपके ज़िम्मे पर वो हो सकता है, कोई भी अगर नाजिम है तो वो अपने इंतज़ामी हवाले से जो भी उसके टारगेट्स हैं उसको देख सकता है। तो बुनियादी बात यह है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे अंदाज पर होनी चाहिए, और जब आप एक काम को करें तो उसे पहले मुकम्मल करें उसके बाद दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी हदफ है, उसको शुरू करने से पहले किसी माहिर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, हम एक काम को शुरू करना चाहते हैं, उसका नफ़ा हमारे पेशे नज़र होता है, जभी तो हम उसको करने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी माहिर से मशवरा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने हदफ को मुकम्मल करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकेंगे और जल्द कामयाब हो सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपने किसी भी फील्ड में एक बड़ा नाम पैदा करना है, बड़ा काम करना है, आपका बड़ा टारगेट है। अब उसके हुसूल के लिए एक तो ये तरीका है कि आप अपने तौर पर उसको शुरू कर देते हैं और ख़ुद ठोकरें खाते हैं, उसके प्लस माइनस आपके सामने आते हैं, फिर आप दुरुस्त सम्त इख्तियार करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गलती करते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो ये तरीका है, इससे भी टारगेट हासिल हो जाएगा। लेकिन एक तरीका जो इससे बहुत बेहतर है वो क्या है कि ऑलरेडी जो उस चीज़ को कर कर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुके उनसे मशवरा कर लीजिए। आप यकीन करें आपका वक्त भी बचेगा, आपकी ठोकरें भी बचेंगी, आपका सरमाया भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो इल्मुल कलाम पर पढ़ना चाहता है और उसने अपना ये टारगेट बनाया है कि इल्मुल कलाम पर मैं एक बेहतरीन स्टडी करके एक बेहतरीन आलिम बनना चाहता हूँ और ये मेरा हदफ है। अब इल्मुल कलाम पर सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से कई कम मुफीद होंगी, कई ज़्यादा मुफीद होंगी, कई ऐसी होंगी कि जिस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं वो 10 किताबों का नचोड़ है, और अगर वो एक किताब आप पढ़ लें तो गोया के आपने 10 किताबों का जो हदफ था, जो उससे हासिल करना था, वो आपको एक किताब ने हासिल करके दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी माहिर के पास जाए बगैर आप पहले वो 10 किताबें पढ़ें और फिर पता लगे कि यार इन 10 किताबों को पढ़ने का तो इतना ज़्यादा फ़ायदा था ही नहीं या ज़रूरत ही नहीं थी, ये एक किताब मैं पढ़ लेता तो मुझे 10 का फ़ायदा हासिल हो जाता, तो आप बताइए आपका कितना वक्त बचता। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आप खुद लगे रहे। अगर इल्मुल कलाम पर आपको पढ़ना है तो जो आपके सीनियर असातिज़ा हैं या इल्मुल कलाम पर किसी का बहुत अच्छा ऑलरेडी मुताला है तो पहले आप जाकर उससे मशवरा कर लीजिए कि मैं इस टॉपिक पर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए कि इस टॉपिक पर पढ़ने की बेहतरीन किताब क्या है। आप यकीन करें आपका इतना सारा वक्त बच जाएगा और आप मिस्टेक से, गलती से महफूज रहेंगे कि आप खुद हैरान होंगे। तो आज खुद किसी राह पर चलने के बजाय किसी माहिर से, किसी उस फन, वो फन है तो फन का माहिर, अगर वो कोई इल्म है तो इल्म का माहिर, अगर वो कोई स्किल है तो उस स्किल का माहिर, अगर वो कोई और तरह की चीज़ है तो उस फील्ड का माहिर, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके माहिर के पास जाकर एक दफ़ा मशवरा कर लीजिए। और मशवरा हमेशा तजर्बाकार से करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस हम चार दोस्त हैं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं और आपस में मशवरा करके हमने कुछ भी तय कर लिया और हमने समझा कि हमने मशवरा कर लिया। भाई ये जो चार है ना, ये आपको उतना ही मशवरा देंगे जितना इनका दिमाग है, जितना इनका नॉलेज है। जाहिर है ये खुद अभी स्टूडेंट है, खुद तालिब इल्म है। मैं नहीं कहता कि तालिब इल्म से मशवरा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो भी आपको मशवरा देगा वो अपने इल्म, तजर्बे, उम्र और उसके मुताबिक देगा। माहिर से मशवरा करें, पहले ढूंढें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में इस वक्त हज़ारों तलबाए किराम हैं, तो कितने इसके अंदर काबिल स्टूडेंट्स होंगे जिनसे आप मशवरा कर सकते हैं। इसी तरह आपके असातिज़ा किराम, अच्छा असातिज़ा में भी एक से बढ़कर एक है। एक वो उस्ताद साहब हैं कि जिनको पढ़ाते हुए 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, और एक वो उस्ताद साहब हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी इसके अंदर गुजार दी, उनको 20 साल हो गए। अच्छा फिर असातिज़ा में रुझान का भी फ़र्क होता है, बाज़ोकात एक ही उस्ताद साहब कई असबाक पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ उन चार में से किसी एक में ज़्यादा होती है, या असातिज़ा भी समझते हैं, तलबा भी समझते हैं। तो आप कोई भी काम ज़माने तालिबे इल्मी में करना चाहते हैं तो आप अपने असातिज़ा में देखिए, गौर करें, असातिज़ा से ही मशवरा करें, पूछें कि उस्ताद साहब इस बारे में मुझे आप भी रहनुमाई फरमाइए, और आप किसे समझते हैं कि जो इस फन का माहिर है, आप उनसे मशवरा कीजिए। अब तो मशवरा करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर कोई किसी और शहर में है तो मोबाइल के ज़रिए रब्ता हो सकता है। हमारे साथ पढ़ने वाले इस वक्त माशाल्लाह कई असातिज़ा हैं जिनको 18-18 साल हो गए पढ़ाते हुए, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमें पता है कि वो सारे ही जो असातिज़ा हैं उनमें से कौन किस फन के अंदर माहिर है। ज़माने तालिबे इल्मी के अंदर ही, स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही अगर हम 30-40 थे तो उनमें से कुछ फ़िक्र में महारत रखते थे, कुछ इल्मुल कलाम में महारत रखते थे, कुछ नहव में बहुत अच्छे थे, कुछ सर्फ में बहुत अच्छे थे। तो हमें पता है कि इनमें से कौन कितना बेहतर था। और अब जब टीचर बने, उस्ताद बने और उसके बाद पढ़ाते हुए उनका एक अरसा गुजर गया, तो उनमें से कुछ किसी फ़न में माहिर, कोई किसी फ़न के अंदर माहिर। तो ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि जो गज़ालिय ज़मां हो और राज़िय दौरां हो कि जो तमाम फ़नून का सबसे बड़ा माहिर हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, कम होता है, बहुत कम ऐसे अफराद होते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि एक या दो फ़नून के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा महारत होती है, बकिया में थोड़ा कम होती है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो बराए करम अभी आपकी चूँकि काफ़ी लाइफ बाकी है, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने आना है, तो ये जो वक्त है ये आपके लिए बहुत कीमती है। और जब एक दफ़ा ये गुजर जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह से हो जाएंगी, तो इतना ज़्यादा खुला डुला वक्त जिसे आप कहिए वो नहीं हो पाएगा। ज़ाहिर है जब आपने आगे बढ़कर बहुत सारे काम करने होंगे तो पर्सनल लाइफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो अगर ये जो वक्त आपके पास अभी मौजूद है, 4 साल 5 साल 6 साल जिसके जो भी टाइम अभी स्टूडेंट लाइफ का इस तरह से बाकी है, तो इसे गनीमत जानिए और इसे फजूल में या कम फ़ायदे वाली चीज़ के अंदर सर्फ ना कीजिए। हमारे नज़रों के सामने कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अब तो बड़े हो गए, जिन्हें हम अगर गौर करें तो नज़र आता है कि यार इसने उस काम में इतना वक्त सर्फ किया और अब जो है वो एक मामूली से काम पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि जिस वक्त में उसे महारत हासिल करनी थी, जिस वक्त के अंदर किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ना था, वो सही से ढंग से गुजारा नहीं, तो अब जो है वो बेचारे परेशान भी होते हैं। तो अभी आपके पास बड़ा ही ज़बरदस्त वक्त है। तो ये जो मैं आपको डायरेक्शन पेश कर रहा हूँ, जो मशवरा दे रहा हूँ, बराए करम आप कोई भी काम शुरू करें, ख्वाह वो लिखने का हो, ख्वाह वो पढ़ने का हो, ख्वाह वो तकरीर का हो, ख्वाह वो तहरीर का हो, ख्वाह वो किसी और स्किल के सीखने का हो, तो अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखिए और किसी भी माहिर से मशवरा किए बगैर कोई काम शुरू ना कीजिए। इवन के आप तलबा हैं, आपने बयानात करने हैं, आपने जो है वो ज़ाहिर है कि आलिम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छा मुकर्रर भी हो, वो एक अच्छा मुबल्लिग भी हो, क्योंकि इल्म को फैलाने में एज़ अ मुबल्लिग आपका अच्छा बयान करने वाला होना, अच्छा एक्सप्लेन करने वाला होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब कई तलबा किराम हैं बेचारे, वो अच्छा बयान नहीं कर पाते। बयान एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, तो इस मौजू पर किताबें मौजूद हैं, आप पढ़िए। इस मौजू पर जो अच्छा बयान करने वाले हैं, अच्छा समझाने वाले हैं, जिनकी तफहीम बहुत अच्छी है, उनसे मशवरा कीजिए कि आप हुजूर हमें बताइए कि हम एक अच्छे मुबल्ली कैसे बन सकते हैं, एक बेहतरीन तफहीम करने वाले हम उस्ताद कैसे बन सकते हैं। तो जब आप सीख कर मशवरा लेकर उस काम को शुरू करेंगे, तो आप यकीन करें कि कम वक्त में एक बेहतरीन हदफ इख्तियार करने में और उसे पूरा करने में आप कामयाब हो सकेंगे। ये सारी बातें आप अपने पेश नज़र रखिए और हर तालिबे इल्म अपने एतबार से, आप उला में हैं, सानिया में हैं, सालिसा में हैं, आप सादिसा में हैं, आप दौरे हदीस शरीफ में हैं, किसी भी दर्जे में हैं, आप इन चीज़ों को अपने पेश नज़र रखिए और जो कुछ मैंने अर्ज़ किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक नज़र रुक कर उसको ज़रा क्रॉस कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको कमी कोताही महसूस होती है तो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर लीजिए। याद रखिए, अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त ना हुई तो उस नहर के पानी की तरह कि जो पानी खेतों तक पहुंचता तो है लेकिन कभी इधर कभी उधर ज़ाय होता हुआ 20% 30% ज़ाय हो जाता है और सिर्फ 50% 60% 70% अपने टारगेट तक पहुंचता है। आपके साथ भी ऐसा ना हो। उम्मत को आपकी बड़ी ज़रूरत है, लोगों को बड़ी ज़रूरत है, फितने ज़माने में बेशुमार हैं और अल्लाह पाक ने आपको ये मौका अता फरमाया है कि आप बहुत सारे चैलेंजेस को गुजार कर तालिब इल्म बन चुके, राह इल्म के मुसाफिर बन चुके, आप प्रैक्टिकली एक ऐसी फील्ड को इख्तियार कर चुके जो आपको आलिम बनने तक, मुफ्ती बनने तक और उम्मत का रहनुमा बनने तक ले जाने वाली है। अब इस वक्त को, इस टाइम को, इस मौके को ज़ाय ना होने दीजिए और बेहतरीन तौर पर गुजारिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत सारे मसाइल से भी महफूज रहेंगे और अपने आदाब को हासिल करने में बेहतरीन अंदाज पर कामयाब हो सकेंगे। आखिर में मैं एक बात करके अपने आज के प्रोग्राम को क्लोज करूंगा कि लिखने की आदत बनाइए। जितनी बातें मैंने आपको अर्ज़ की उन्हें तहरीर में लाइए। आपका टारगेट, आपका हदफ लिखा हुआ होना चाहिए। ये माहिरीन का कहना है कि हर वो चीज़ जो लिखी हुई नहीं है तो समझिए कि वो हवाई है। तो आपका जो भी हदफ है, जो भी टारगेट है, उसको लिख लीजिए और उसके ज़िम्न में जो मैंने कहा कि टाइम बाउंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, किससे आपने मशवरा किया, उसको कैसे आपने तकसीम किया, ये सारी चीज़ें अपने पास लिख कर महफूज कर लीजिए। और वो जो लिखा हुआ है उसको बार बार देख कर जब आप पढ़ते रहेंगे, क्रॉस चेक करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। बहुत सारे हमारे आदाब इसलिए मुकम्मल नहीं होते कि वो हमारे खाली ख्याल के अंदर हैं, हमारे दिमाग के अंदर हैं। जब चीज़ हमारे दिमाग के अंदर है और सिर्फ दिमाग के अंदर ही है तो वो अंदर ही अंदर रह जाती है, उसका खारिज में वकूअ बाज़ औक़ात नहीं हो पाता। जब आप लिखते हैं, फोकस्ड होते हैं, क्लियर होते हैं और उसको बार बार आप पढ़ते रहते हैं और अपना तजज़िया करते रहते हैं, मवाजना करते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्रॉस चेक करते रहते हैं, तो फिर आप बड़े अच्छे अंदाज पर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक आप सबको बेशुमार बरकतें अता फरमाए और अपने आदाफ में कामयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। जब हो डायरेक्शन जन्नत के बागात हो डेस्टिनेशन डायरेक्शन।